रात के 1 बज रहे थे। भयंकर बारिश हो रही थी। बारिश के साथ बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। बारिश होने की वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में घुस गए थे और बाहर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। इतनी बारिश के बावजूद मुंबई से थोड़ी दूर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की छत पर एक लड़की नीचे गिरी हुई थी। उसने काले रंग का ऑफिस सूट पहन रखा था। लड़की बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके माथे और होठों के पास से खून निकल रहा था। इन सब के बावजूद उसकी गहरी स्लेटी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही थी। उसके सामने 3 आदमी खड़े थे। उनका हुलिया देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो अच्छे आदमी नहीं थे। उनमें से एक आदमी में हाथ डालकर लड़की के गले में हाथ डालकर उसका आई कार्ड झपटा और उसमें उसका नाम पढ़ते हुए बोला, वैदेही रघुवंशी, तुमने जो भी रिकॉर्ड किया है वो चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना सोच भी नहीं पाओगी हम तुम्हारी क्या हालत करेंगे। उनकी उम्मीद के विपरीत डरने के बजाय वैदेही उनकी बात सुनकर हंसने लगी। देखा कैसे बेशर्मी से हंस रही है ये, उनमें से दूसरा आदमी पैर पटकते हुए बोला, पिछले 2 घंटों से इसे उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं, भागते हुए कहां से कहां आ गए, उसके बावजूद ये कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं कैमरा कहां छुपा रखा है जो मिल ही नहीं रहा। मैं तो कहता हूं खत्म कर देते हैं इसे। तीसरे गुंडे ने ये सोचकर उसे डराने की कोशिश की कि जान जाने के डर से वैदेही सच उगल दे। उनकी बात सुनकर वैदेही ने अपनी आंखें घुमाई और फिर सख्ती से जवाब देते हुए कहा, अगर मारने के ऑर्डर मिले होते तो 2 घंटे मुझसे ये पूछने में वेस्ट नहीं करते कि कैमरा कहाँ है। तुम लोग बेवकूफ हो, मैं नहीं। वैदेही की बात ने उन तीनों को चिढ़ा दिया। वो पिछले 2 घंटे से उसे कैमरे के बारे में पूछ रहे थे जिसमें उसने उन लोगों के बॉस की इम्पोर्टेंट मीटिंग को रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन इतनी सख्ती करने के बावजूद वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। ऐसा भी क्या है उसमें जो उसके लिए सरजी हमें इसके पीछे भेज दिया, उनमें से एक ने पूछा। तुम जानते हो ना हमारे बॉस मिस्टर हरिदास सिप्पी शहर के कितने बड़े बिल्डर हैं। उन्होंने मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद किसी जगह पर कब्जा कर दिया था और उसके चक्कर में वहां पर एक बुड्ढा बुड्ढी के जोड़े को मार दिया था। पता नहीं इस रिपोर्टर को मैं कैसे उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया गया, बस इसीलिए बॉस ने हमें इसके पीछे भेजा था, दूसरे ने उसकी बात का जवाब दिया। मार नहीं सकते लेकिन और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उनमें से एक गुंडे ने वैदेही पर नजर डालकर बोला। वो उसे बुरी तरह घूरे जा रहा था। उनके साथ मौजूद 2 गुंडों ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन वो भी उसे गलत नजर से देख रहे थे। उनमें से एक गुंडा उठा और वैदेही के पास आने लगा। तभी उसने अपने पैर से उसके पेट में जोर से लात मारी। पिछले 2 घंटों से तुम लोग मुझे नहीं, मैं तुम लोगों को भगा रही हूँ, वैदेही ने अपने होंठ के पास लगा खून पहुंचा। सच बताऊं तो मैं तुम्हारे बॉस की मीटिंग में ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी अभी तुम दोनों ने अपने मुंह से जो कन्फेशन किया है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बॉस को अरेस्ट होने से कोई बचा पाएगा। तेरी तो, उनमें से एक गुस्से में चिल्लाया। अगर बॉस को पता चला तो इसे बाद में मारेंगे, पहले हमारी जान ले लेंगे। उनकी बात सुनकर वैदेही मुस्कुराई और वहां पड़ा एक लोहे का सरिया उठाकर उनमें से एक के सिर पर वार किया। अगले ही पल वैदेही ने बिजली सी फुर्ती दिखाई और उसी सरिये से दूसरे के पीछे 2-3 बार किए। तीसरा बंदा अपने साथियों को संभालने लगा कि तभी वैदेही ने उसके पेट पे किक मारी। वो तीनों नीचे गिर गए और उन्हें संभालने का मौका मिल पाता उससे पहले वैदेही वहां से भागने लगी। अरे पकड़ उसको, उनमें से एक गुंडा चिल्लाया। जैसे तैसे करके वो तीनों खड़े हुए और उसके पीछे भागने लगे। तब तक वैदेही नीचे के फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। एक गुंडे ही अपनी जान की बाजी लगाते हुए ऊपर से ही कूदने की कोशिश की, लेकिन बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से वहां लगा सरिया उसके पेट के आर पार हो गया। एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई और अपने साथी का बुरा हाल देखकर दोनों सहम चुके थे। बचे हुए बाकी 2 गुंडे उस तक पहुंच पाते उससे पहले वैदेही उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। हालांकि उसके पास वहां से भागने के लिए कोई साधन नहीं था, लेकिन कुछ दूर जाकर वो अपने लिए सुरक्षित जगह देखकर छुप गई थी। वैदेही उनसे छुपते छुपाते थोड़ी आगे निकली, तभी एक बाइक उसके पास आकर रुकी। उसने अपना हेलमेट निकाला। बाइक पर बैठा लड़का लगभग 21 साल का था। वो अपने बालों में हाथ डालकर वैदेही को देखकर मुस्कुरा रहा था। वैदेही जल्दी से उसके पास आई और कहा, देव ये वक्त स्टाइल झाड़ने का नहीं है, जल्दी चलो यहाँ से वरना मेरे साथ साथ वो तुम्हें भी मार देंगे। देव ने जल्दी से बाइक के हैंडल में टंगा हेलमेट वैदेही को पकड़ाया और बाइक स्टार्ट की। कुछ ही देर में वो उन गुंडों की पहुंच से दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच थे। अगले दिन वैदेही की रिकॉर्ड की गई न्यूज लाइव आ रही थी। सब जगह उसके काम की तारीफ की जा रही थी। उसके जुटाए सबूतों की वजह से बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया था। लंच टाइम होने पर सब एम्प्लॉयज कैंटीन की तरफ रुख करने लगे। तभी चैनल हेड मिस्टर प्रतीक शर्मा वहां आए। गाइज अटेंशन प्लीज, उनके कहते ही सब लोग अपना अपना काम छोड़कर उनके आसपास इकट्ठा हो गए। सब इकट्ठे होते हुए मिस्टर शर्मा ने अपने हाथों पर किए और ताली बजाकर बोला, दिस वन फॉर यू वैदेही, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वैदेही। उनके कहते ही सब वैदेही के लिए तालियां बजाने लगे। वैदेही मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देख रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट बंद होते ही मिस्टर प्रतीक शर्मा फिर बोले, सच में वैदेही, तुम काबिले तारीफ हो। इतने कम वक्त में हमारे चैनल ने जो पहचान बनाई है वो सब तुम्हारी वजह से है। जहां लोग टीआरपी के चलते कुछ भी दिखाने को तैयार रहते हैं, सच झूठ का भी फर्क भूल जाते हैं, वहीं हमारे चैनल में सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबरें दिखाई जाती हैं, वो भी सबूत के साथ, और इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। ये तो सही कह रहे हैं आप सर, वैदेही इसके लिए अपनी जान की बाजी तक लगा जाती है। अब कल रात को ही देख लीजिए, वहां खड़ी एक लड़की ने वैदेही की तरफ देखकर बोला, जिसके माथे और होंठ के पास अभी भी चोट के निशान थे। ये सब मेरे अकेले की वजह से कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, आप सब लोगों का सपोर्ट है तभी मैं ये सब कर पाती हूँ। भले ही कल रात मेरी जान खतरे में थी, लेकिन मेरे एक कॉल के साथ इतनी बारिश में भी देव मुझे लेने के लिए वहां पहुंच गया था, वैदेही ने जवाब दिया। हाँ, इस चैनल की सक्सेस का पूरा क्रेडिट तुम सबको जाता है, स्पेशली तुम्हें वैदेही। तो जैसा कि सब जानते हैं कि परसों 10 जून को चैनल को पूरे 5 साल होने वाले हैं। इसकी एनिवर्सरी पार्टी के साथ साथ वैदेही का प्रमोशन पक्का, और साथ ही आपकी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट किया जाएगा। प्रतीक की बात खत्म होने से पहले ही वो सब ताली बजाते हुए होटिंग करने लगे। थैंक यू सो मच सर, वैदेही ने जवाब दिया। तो कल संडे के दिन आप लोग फ्री हैं और आराम से जाकर पार्टी की तैयारी कर सकते हैं। ये पार्टी काफी ग्रैंड होने वाली है। यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एमएलएज और भी बड़ी हस्तियों को बुलाया जाएगा। अगर आप किसी के फैन हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें स्पेशल इनविटेशन भेज दूंगा। हाँ, और आपके फैमिली मेंबर्स भी इन्वाइटेड हैं। प्रतीक ने एक सांस में सारी बात बोल दी। उसकी बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। उन्होंने प्रतीक की बात पर हामी भरी और वहां से लंच ब्रेक के लिए चले गए। वैदेही भी वहां से कैंटीन की तरफ पड़ी। तभी एक लड़की उसके पीछे दौड़ते हुए आई और हंसते हुए बोली, सभी फेमस पर्सनैलिटीज को बुलाया जाएगा, इसका मतलब वो भी आएगा ना। वो लड़की क्या कहना चाह रही थी वैदेही को समझ नहीं आया। वो उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी।